त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सलतुलसहोद्रम् संसारचक्रकदनाकृशतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणं वयसे कदा नु। इस भौतिक जगत में रहना ही दुखमय है, किंतु यदि किसी को असुरों अथवा नास्तिकों की संगति से पाला पड़ जाए तो और भी असहनीय हो जाता है। कोई यह पूछ सकता है कि जीव को भौतिक जगत में क्यों डाल दिया जाता है। निसंदेह मूर्ख लोग कभी कभी भगवान का उपहास करते हैं क्योंकि वे उन्हें यहाँ ले आए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार बद्ध जीव में रखा जाता है। अतएव प्रहलाद महाराज अन्य समस्त बद्ध जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपने कर्म के कारण असुरों के बीच में रखा गया है। भगवान कृपण वत्सल कहलाते हैं क्योंकि वे बद्ध जीवों पर अत्यधिक दयालु हैं। अतएव जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जब जब धर्म के पालन में त्रुटियां आती हैं, तब तब भगवान अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सजामहम। भगवान बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। अतएव वे हम सबों को भगवत धाम लौटने के लिए उपदेश देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस तरह प्रहलाद महाराज को आशा थी कि भगवान कृपा करके उन्हें अपने चरण कमलों की शरण में फिर से बुला लेंगे। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करके भगवत धाम लौटने के लिए उत्सुक रहना चाहिए और इसी तरह कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह प्रशिक्षित होना चाहिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा वैहं ददाति स्वपदांतिकं। वन्देहं श्री गुरवः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरदानं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावैकं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणदलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछालंपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। कष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकाल शुभ भागवत कक्षा में और सभी वरिष्ठ भक्तों में यहाँ पे आशीर्वाद लेकर के इस प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सलतुलसहोद्रम् सहोग्रह संसार चक्र कदनाम प्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्ग शरणं वयसे कदा नु। हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूँ। अतएव मैं इस भौतिक संसार में अपनी जीवन दशा अत्यधिक भयभीत हूँ। वह क्षण कब होगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य है। तो प्रहलाद महाराज अपनी स्तुतियों द्वारा नरसिंह भगवान को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। तो पिछले से पिछले श्लोक में बोल रहे हैं कि जो साधु पुरुष होते हैं वो भी जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं जैसे सर्प और बिच्छू, उनके मृत्यु पर बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आप कृपा करके अपना क्रोध त्याग दें, क्योंकि जो इस असुर हिरण्यकश्यपु की मृत्यु से सारे लोगों को अत्यंत संतोष हुआ है, तो अब सब सुख के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन आपके ऐसे भयावह रूप को देख करके सब थोड़े चिंतित हो रहे हैं। तो आपके इस रूप की चर्चा की प्रार्थना अर्पित करते हैं या वो सदैव स्मरण करेंगे यदि लोग भय से मुक्त होना चाहेंगे, यदि भक्त लोग। और पिछले श्लोक में जो रविवार को इसके स्वर्गपति प्रभु ने लिया था, तो उसमें प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हालांकि आपका रूप बहुत भयावह है, बहुत डरावना है, भयंकर है, लेकिन मैं तो ना आपके भयानक मुख से, जीव से, ना आपके सूर्य के समान चमकीली आंखों से या टेढ़ी भौहों से भयभीत हूँ, तेज नुकीले दांतों से, आंतों की माला से, रक्त रंजित गर्दन के बालों से या पर्चे जैसे पहने कानों से भी नहीं डर रहा हूँ, ना मैं आपके भीषण सिंहनाद से भयभीत हूँ जिससे हाथी भागकर दूर चले जाते हैं, ना नाखूनों से भयभीत हूँ जो आपके शत्रु को मारने के निमित्त है। अर्थात भगवान का हालांकि रूप तो बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है, लेकिन भयावह है। और प्रहलाद महाराज जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेकिन मैं भयभीत नहीं हूँ। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में दो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में इतनी भयानक लहरें होती हैं, लेकिन जिस मछली ने भगवान उस समुद्र की शरण ग्रहण की होती है तो उसको तो कुछ डर नहीं लगता, वो तो आराम से भी उसमें तैर सकती है। या जो सिंह होता है, शेर होता है, वो सभी पशुओं के लिए भयावह होता है, जंगल का राजा होता है, किंतु अपने पुत्र के लिए जो उसका शावक है या पुत्र है उसके लिए भयावह नहीं होता, है कि नहीं, उसके लिए तो वो पिता है। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज जो है नरसिंह भगवान को भगवान के रूप में या उनके रूप में एक्सटर्नल्स में ना जा करके वो कह रहे हैं कि मैं आपको परम पिता के रूप में देख पा रहा हूँ अपने, और तभी कह रहे हैं परम शक्तिशाली दुर्जय या प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, अब भला कौन सेवक अपने स्वामी से डरता है, अपने स्वामी के आश्रय ग्रहण करता है। तो इस श्लोक में वो बोल रहे हैं, पिछले श्लोक में तो अपनी निर्भयता का वर्णन कर रहे थे कि मैं भयभीत नहीं हूँ, लेकिन इस श्लोक में वो चर्चा कर रहे हैं कि मेरे को एक चीज से भय है, त्रस्तोस में हम कृपण मैं बहुत जो हूँ डरा हुआ हूँ, त्रस्तो कि मैं डरा हुआ हूँ, किसी से भय है मुझे इस भौतिक जीवन से, इस संसार दावा नलदी लोक का, कि ये जो संसार है भव सागर है जहाँ पे हर क्षण आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश है, यहाँ पे भगवान को भूलने के कारण पदम पदम या विपदम हर पद पग पर कष्ट है, तो यहाँ पे मुझे बहुत जो है भय है। और फिर आगे वो कह रहे हैं कि फिर मैं यहाँ पे आया क्यों, अभी हम में से किसी को यदि मालूम हो किसी जगह में जा करके बहुत खतरनाक जगह है और बहुत वहाँ पे खतरा है, डरावनी जगह है, संकट आ सकता है, तो स्वाभाविक है हम में से कोई व्यक्ति उस जगह में जाएगा नहीं, है कि नहीं। मान लीजिए यदि आपको बता दिया जाए कि आप जहाँ गाड़ी चला रहे हैं आगे जाके इस रोड पर बहुत गहरा गड्ढा है, तो हम में से कोई उधर जाएगा ही नहीं, है कि नहीं, या बड़े ध्यान को चलाएंगे गड्ढे के साइड से निकल जाएंगे। भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलि सुभद्रा महाराज की जय, श्री राम नारायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि हमको पता हो कि यहाँ पे खतरा है, या जैसे हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आगे बोर्ड भी लेके आते हैं, यू नो ड्राइव स्लोली, डेंजरस कट, यू नो डेंजरस कर्व अहेड, या इस प्रकार से, या स्पीड ब्रेकर हेड, या टोल ब्रिज और स्पीड कम कर लीजिए, तो हम उसके अनुसार पालन करते हैं। तो फिर हम भौतिक जगत में क्यों आ गए जब यहाँ पे इतना खतरा है, बार बार यहाँ पे जो है व्यक्ति को दिन रात सुबह शाम इतना कष्ट मिल रहा है, और यहाँ पे एक कष्ट समाप्त होता है और दूसरा आ जाता है, सच बात है कि नहीं, क्या हम सबको अनुभव होगा कि दुनिया में एक कष्ट समाप्त होता है और दूसरा आ जाता है, और जब हम दूसरे का पूरा प्रयास करते हैं कष्ट को दूर करने के लिए, भरसक प्रयास करते हैं, जब कष्ट दूर हो जाता है तो क्या होता है, तीसरा कष्ट आ जाता है, कभी शारीरिक तो कभी मानसिक, कभी सामाजिक, कभी आर्थिक, किसी ना किसी प्रकार से दुनिया में प्रत्येक जीव को कष्ट मिलता ही रहता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं संसार में जो बहुत डरा हुआ हूँ, और वास्तविकता में देखा जाए अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा अन्वेषण करें तो हम देखेंगे कि हम सबको वास्तविकता में डरा होना चाहिए, हालांकि ये शरीर है जो जीवात्मा को हम सबको शरीर मिला है, हम शरीर नहीं है, और ये शरीर मिला है हमारे पुण्य कर्मों के कारण नहीं। हमें ये जो भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है ये हमारे पाप कर्मों के कारण हमें प्राप्त हुआ है, ये भगवान को भूल जाने के कारण हमें प्राप्त हुआ है, और सजा मिलने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है वास्तविकता के अंदर। और हम देखें यदि बचपन से अभी तक अपने जीवन काल में इस शरीर से हमें सुख तो बहुत कम मिला है, लेकिन अधिकांश कष्ट ही मिला है। एक्चुअली ये शरीर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा आत्मा के ऊपर तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि नहीं, कि आत्मा जो कि सच्चा आनंद है, भगवान के चरण कमलों में सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल आनंद में है, और यहाँ पे ये असत अचित निरानंद शरीर उसको प्राप्त हो करके और दिन रात सजा मिलता है उसको। और अगर हम देखें 24 घंटे के अंदर हमारा कितना समय इस शरीर को मेंटेन करने में लग जाता है, हमको 6 घंटा मिनिमम तो इसको शरीर को विश्राम देना पड़ता है, मिनिमम से मिनिमम। इसके बाद 2-3 घंटा हम जो है भोजन करेंगे और क्लीनिंग वगैरह करेंगे सब इत्यादि, आराम से 2-3 घंटा उसको दिन में 3 बार खाना पड़ता है, 2 बार खाना पड़ता है, उसका स्नान इत्यादि करना पड़ता है, तो 9 घंटे तो ऐसे ही चले गए। उसके बाद 9-10 घंटे कार्य करना पड़ता है इस छोटे से पेट के को भरने के लिए, धन कम अर्थ उपार्जन करने के लिए, धन कमाने के लिए, तो 18-19-20 घंटा एक दिन में देखा जाए तो इस शरीर की सेवा में लगता है। सच बात है कि नहीं? सोचिए ये शरीर मिला है, इसको मेंटेन करने में इतना एनर्जी चला जाता है, उसका बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाना अलग है, और कितना कितना चीज हमें जो करना पड़ता है, और उसके बाद घर को मेंटेन करना है, गाड़ी मेंटेन करना है, सब करना पड़ता है। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे जीवन का 75% जीवन तो का जो समय है 60-75% वो तो केवल इस शरीर को मेंटेन करने में लग जाता है। अगर देखा जाए किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री या कंपनी को मेंटेन करने से भी ज्यादा कठिन है शरीर को मेंटेन करना, और जितना मेंटेन करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ समस्या आए रहता है। शरीर ठीक है तो मन खराब है, मन ठीक है तो शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, और नहीं तो अधिकांश दोनों ही समस्या है, शारीरिक समस्या भी रहती है, कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, और मन से तो हमेशा समस्या रहती है दुनिया के अंदर प्रत्येक जीव को। तो अगर देखा जाए तो इसीलिए प्रहलाद महाराज एक कारण है कि मैं डरा हुआ हूँ इस भौतिक स्थिति से, इस भौतिक भयावह जो संसार है उससे। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं भौतिक जगत में रहना ही दुखमय है, इससे बड़ा भय क्या है यदि किसको असुरों और नास्तिकों की संगति से पाला पड़ जाए तो। यदि भक्तों का संगत किसी को प्राप्त हो तो और ही भयावह हो जाता है। ऐसा नहीं कि भक्तों के संगत से ये भयावहता से भौतिक जगत ही कम हो जाती है, लेकिन भक्त धीरे धीरे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके इस भयावह स्थिति को ट्रांसेंड कर लेते हैं और प्रयास करते हैं। और जब हम साधना भक्ति करने का प्रयास भी कर रहे हैं तो तभी भी ये आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक क्लेश जन्म मृत्यु जरा आदि ये क्लेश भक्त को भी सताते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं कि ये तो जैसे कृष्ण गीता में कह रहे हैं मात्रा स्पर्शा सुख कौंते या शीतोष सुख दुख कदा आगम पाय तो नित्य भारत है कि हे अर्जुन ये अनित्य हैं, आते हैं और जाते हैं, इनको सहन करना चाहिए। तो भक्त जो है वो प्रयास करते हैं कि इस भौतिक स्थिति को भौतिक दशा को सुधारने का ज्यादा प्रयास नहीं करते वो, क्योंकि ये टेम्पररी है, लेकिन वो भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करके इस पूरे स्थिति को ही ट्रांसेंड करने का जो इससे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन यदि असुरों नास्तिकों का संगत प्राप्त हो तो और अधिक जीवन दुखमय हो जाता है, असहनीय हो जाता है, और हम सबका अनुभव भी होगा उस दिन हमें भक्तों से थोड़ा दूर रहना पड़ता है, जहाँ आसपास के अभक्त हैं तो हम सबको ही बहुत अजीब सा फील होने लगता है कि कुछ मिसिंग है जीवन के अंदर, है कि नहीं? हमारे कई भक्तों को तो अनुभव रहता है वो जब एग्जाम देने जाते हैं या जॉब करने के अलग जगह ट्रांसफर जहाँ भक्त नहीं होते तो उनको बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे मछली जल से निकाल दी गई हो, तड़पती रहती है, उसी प्रकार से उन्हें जीवन में भी बहुत सारा खालीपन महसूस होने लगता है, कुछ बहुत मिसिंग है, बहुत महत्वपूर्ण चीज। महत्वपूर्ण चीज क्या याद है? यही मानो पूरा प्राण ही मिसिंग है कि नहीं? ये तो जो बस रोज आते हैं तो उनको रोज सुबह सुबह अपना बैटरी चार्ज हो जाता है, तो जो है हम जब करते हैं अध्ययन करते हैं श्रवण करते हैं, नहीं तो अगर ऐसे जाएंगे तो बिल्कुल असहनीय लगता है संसार, है कि नहीं? तो लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज एक विशेष बात बता रहे हैं कि मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूँ। कई बार ज्यादा खुलासा भी करते हैं तो पहला पॉइंट अगर आज चर्चा करें तो ये है, हम सबको अपने जीवन की असहनीय दुखमय स्थिति के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कई बार अधिकांश लोग तो यही बोलते हैं, मैंने किसका क्या बुरा किया था, तो मेरे साथ ये बुरी स्थिति हो रही है कि नहीं। और लोग अपनी जिम्मेदारी को उठाने का या जिम्मेदारी उठाने का दायित्व नहीं लेते, उत्तरदायित्व नहीं लेते कि मैं ही अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हूँ। हम बोलते हैं अच्छा भगवान जिम्मेदार है, या ये जो आजू बाजू के लोग हैं मेरे साथ में वो जिम्मेदार है ना। हम बहुत सारी चीजों को ब्लेम कर सकते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन सबसे मुश्किल चीज है दुनिया में अपने ऊपर ब्लेम लेना कि इस स्थिति जिसके अंदर मैं हूँ वास्तविकता में मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। चाहे वो कष्टमय स्थिति हो चाहे कुछ भी हो, अच्छी स्थिति होती है जब हमारे जीवन में, तब तो हम बोलते हैं कि मैंने प्रयास किया था अधिकांश। लेकिन यदि कहीं कष्ट आता है, कहीं कोई चुनौती आती है, चैलेंज आता है, तो हम बोलते हैं क्यों भगवान हमें इतना कष्ट दे रहे हैं, जल्दी समाप्त हो जाए। तो और विशेषकर हम भक्तों को, खासकर जब हमारे जीवन में कष्ट आए तो हमें दो प्रकार से कम देखना चाहिए, मिनिमम दो प्रकार से। पहला तो है कि जिम्मेदारी लेना कि इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, अन्य कोई जिम्मेदार नहीं है। और अब ये जिम्मेदारी ले करके हम डिप्रेशन में ना चले जाएं, राधा जिम्मेदारी ले करके हमें जो है और उत्सुकता पूर्वक भगवान के चरण कमलों की शरण कहनी चाहिए, क्योंकि तो भगवान पतितों पर सदैव है। जैसे यहाँ बताया कृपण वत्सल, कि भगवान जो है कृपण वत्सल है, अर्थात जो कृपण लोग हैं और जो कंजूस लोग हैं या जो पतित आत्मा है उन पर भगवान अत्यंत दयालु है। तो उस कष्टमय स्थिति को हमें देखना चाहिए कि भगवान की कृपा है कि मैं किस पर भगवान की और शरण ग्रहण कर सकता हूँ। अधिकांश हमारे जीवन सुख की स्थिति आती है तो भगवान के से प्रार्थना निकलती नहीं है, जनरली है कि नहीं। और आपको ज्यादा दुख आ जाता है तभी भी स्थिति तभी भी प्रार्थना नहीं निकलती है, तब केवल ब्लेम निकलता है। इसीलिए भगवान मॉडरेट स्थिति में हमको डालते हैं कि भगवान से प्रार्थना कर सके कि हे भगवान इस स्थिति में हमको याद कर सके। तो जब दुख आता है तो हम दुख हम पेन कॉन्शियस हो जाते हैं, और जब सुख आता है तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, है कि नहीं। कृष्णा अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो हमें इसकी जिम्मेदारी लेके भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो प्रहलाद भारत अनुवाद में बता रहे हैं और प्रभुपाद तात्पर्य में खुलासा करते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, प्रहलाद महाराज अन्य समस्त बद्ध जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपने कर्म के कारण असुरों के बीच में रखा गया है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे अपने कर्मों के कारण रखा गया है। और अब कर्मों के कारण हमें यहाँ रखा गया है तो हम सब भक्त का लक्षण है असत संग त्याग ही वैष्णव आचार। महाचैतन्य महाप्रभु ने बोला कि असत वैष्णव का आचार क्या है, कि असत संग का त्याग करने से। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में कि अभक्तों का असत संग जो है वो संग हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि असत संग का अर्थ क्या है, तो संग का अर्थ है मुख्यतः एसोसिएशन मींस एक्सचेंज ऑफ हार्ट्स, जहां पे हृदय की भावनाएं हृदय के विचार जब एक्सचेंज होते हैं उसको संग बोला जाता है। तो असत संग के अंदर महत्वपूर्ण है जब हमें जैसे कल भी किसी ने प्रश्न पूछा गया था कि बिजनेस करते हुए कैसे भगवान का स्मरण किया जाए या जॉब करते हुए इस प्रकार से। तो वहां पे हम जब संसार में रहेंगे तो ये तो संभव नहीं है कि सब कोई लोग पूरा जो बाहर की दुनिया का संग छोड़ करके सब मंदिर में आ जाए। मंदिर में भी आते हैं तो भी कोई ऐसा नहीं, प्रचार करने के लिए आपको बद्ध जीवों का संग करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसमें महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं कृष्ण भावना भावित होकर उनको संग दें, ना कि उनसे प्रभावित होकर संग लें। और यह असत संग सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसके दो में से एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण भक्त भक्ति से च्युत हो जाते हैं, कि जब उन्हें असत संग को गंभीरता पूर्वक धारण कर लेते हैं। जैसे बचपन में आप सबने कहानी सुनी होगी एक मगरमच्छ और बंदर की, कि वो बंदर पेड़ पे रहता था नदी के किनारे और एक मगरमच्छ नदी में रहता था, और मगरमच्छ की पत्नी ने एक दिन बोला, और ये दोनों अच्छे दोस्त थे, तो बंदर जो है फल तोड़ के मगरमच्छ को पेड़ से खिलाता था, और मगरमच्छ थोड़ा बहुत उसको बंदर को अपने पीठ पर बैठा के जो तालाब की सैर कराता था। तो एक दिन जो है मगरमच्छ की पत्नी ने बोला कि एक स्पेशल फीस्ट कुक करेंगे। क्या फीस्ट है? बोला आपका दोस्त है बंदर, उसका कलेजा जो है वो कुक करेंगे। तो बोला अरे नहीं, मेरा दोस्त है। बोला नहीं, आपको लेके आना पड़ेगा। तो फिर वो बंदर के पास गया, बोले आज चलो तुम्हें नदी के बीच में घुमाने लेके चलता हूँ। तो बंदर को बैठाया और नदी के बीच में लेके गया, और अंदर तक जा रहा था तो बंदर को डर लगने लगा। बोले हम कहाँ जा रहे हैं? बोले मेरे घर पे जा रहे हैं अभी, वहां क्या करेंगे? बोला कि जो है वहां पे तुम्हें मार करके तुम्हारे कलेजे को हम कुक करके खाएंगे। बोला अरे पहले क्यों नहीं बताया तुमने, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पे छोड़ के आ गया। तो जो है तो वो बोला अच्छा ठीक है वापस वापस चलो, वापस लेके आते हैं फिर मैं तुम्हें दे दूंगा कलेजा। और जब वापस जाते हैं बंदा पेड़ पे चढ़ता है और फिर ठेंगा दिखाता है कि बोला वापस जाओ और जब मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। तो इस कहानी से ऐसे तो ये एक वैसे लोक कथा है लेकिन इसमें शिक्षा प्राप्त होती है कि संघ मतलब एक्सचेंज ऑफ हार्ट्स बेसिकली, कि जब भक्तों संघ की अदा होंगे हृदय को ग्रहण ना करें, अपना हृदय उनको ना दे दे, अपना हृदय कृष्ण बलराम के राधिका रमन के आध्यात्मिक गुरु के सतगुरु के चरणों में ही लगा के छोड़ के जाएं। ऐसा ना हो कि बाहर जब हमको लोग प्रचार करें कि भौतिक जन्म इतना कष्ट नहीं है यही जीवन है, तो हमने हाँ कोई बात नहीं ये भी जीवन है, तो एक पैर जो है भौतिक जीवन में एक पैर आध्यात्मिक जीवन के अंदर, अर्थात ये आशा रखना कि नहीं भौतिक संसार में सुख है थोड़ा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, भक्ति भी करनी चाहिए और साथ साथ भौतिक जीवन में रहना चाहिए। नहीं, किसी भी आश्रम में हो किसी भी वर्ण में हो भगवान की भक्ति हमारा सर्वोत्तम व्यवसाय है, अन्य सब तो पार्ट टाइम बिजनेस है, करना पड़ता है जीवन को मेंटेन करने के लिए, शरीर आत्मा को मेंटेन करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी के अंदर थे तो वहां के राजा थे प्रताप रुद्र, और वो श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करना चाहते थे। सब भक्तों को बोले, सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले कि आप मेरी उनसे भेंट कराइए, मैं उनके दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। रामानंद राय को बोले, पत्र लिखे बार बार बड़ी विनम्रता पूर्वक, और सब भक्त चैतन्य महाप्रभु के पास जाते थे और निवेदन करते थे, रिकमेंडेशन देते थे कि आप एक बार इस राजा को कृपा प्रदान कर दो, ये जो राजा है नहीं तो राज्य छोड़ देगा, नहीं तो जो है शरीर त्याग देगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि अगली बार यदि आप मेरे को कभी बोले तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चले जाऊंगा, ऐसा भक्त तो भक्त डरते थे। और फिर एक बार जो है चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि क्या कारण है कि वो उस राजा से मिलना नहीं चाहते। बोले हालांकि वो प्रताप रुद्र महान भक्त हैं, भगवान के जगन्नाथ जी के सेवक भी हैं, लेकिन उनके पास क्या है, ये राजा की उपाधि है, और राजा की उपाधि होने से वो एक किंग हैं, तो उन्हें धन स्त्री पावर पॉलिटिक्स इन सब से जो डील करना पड़ेगा और विषय सागर में निश्चित रूप से वो उनको लगे होंगे, इसलिए मिलना नहीं चाहता। और एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक चैतन्य महाप्रभु जो है बोलते हैं, निष्किंचनस्य भगवत भजन मुखस्य पारं पदं जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनां विषयिनां अथ योषितां च हन्त हन्त विषभक्षणतोऽप्य साधु। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं निष्किंचनस्य भगवन भजनोन्मुखस्य, कि यदि कोई व्यक्ति जो बहुत गंभीर है इस भव सागर को पार करने के लिए और भगवान के दिव्य प्रेमामय भक्ति में लगने के लिए, उसके लिए संदर्शना विषयी नाम अथ योषित चांस, कि स्त्री या स्त्री संगी विषयी लोगों से मिलना वो उसी प्रकार से, उसको उसकी आसक्ति होना उसी प्रकार से है जिस प्रकार जान बूझ करके विष को पीना है कि नहीं। कि यदि तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि किसी विषयी व्यक्ति का संग प्राप्त करना या उसके साथ आसक्ति रखना उसके संग में, उससे अधिक क्या है, अच्छा क्या है, विष का पान कर लो। क्योंकि विष का पान करने से क्या होगा, एक बार शरीर नष्ट होगा, लेकिन विषय का पान करने से आपको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। तो अच्छा है कि विष पान करने में तो एक ही बार शरीर नष्ट होगा, तो ज्यादा अच्छा है कि विष का पान कर लो। तो चैतन्य महाप्रभु हमें अपने आचरण सिखा रहे हैं कि कितना हमें असत संग से भयभीत होना चाहिए, और ऑफकोर्स भक्त को चतुर होना चाहिए कैसे जो है वैष्णवों और अभक्तों के साथ के समाज में डीलिंग किया जाए, कि हृदय अभक्तों के संग में हो और भक्तों के संग में हो और बाकी शरीर है हाथ है जीभ है ये सब चलो अभक्तों के संग में जब हमें कुछ करना पड़े तो वहां लगाना चाहिए, वहां हृदय को नहीं लगाना चाहिए। अधिकांश गलती हमारे साथ ऐसा ही हो जाता है, वी बिहेव मटीरियली इन स्पिरिचुअल एसोसिएशन एंड वी टेंड टू बिहेव स्पिरिचुअली इन मटीरियल एसोसिएशन। ऑफिस में जाके तो भक्त बहुत प्रचार करेंगे, स्कूल कॉलेज में जाके, लेकिन जब भक्तों के संग में हम आते हैं तो भी निंदा चुगली और इधर उधर की बातें पॉलिटिक्स की बातें या जो है अस अभक्तिपूर्ण जिनका कृष्ण से ज्यादा सब कोई संबंध नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन बातों में हम ज्यादा रुचि रखने लग जाते हैं। ऐसा कई बार साधक भक्तों के हमने जीवन में और अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि जो है भक्त जब बाहर होते हैं पब्लिक में तो वो तो बहुत बड़ा बड़ा उपदेश देते हैं, लेकिन जब खुद का व्यक्तिगत जीवन आता है तो फिर हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं भक्ति का पालन करने में। होना उल्टा चाहिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए और सामाजिक जीवन में ठीक है किसी को थोड़ा बहुत बता दिया लेकिन डंडा नहीं मार के भक्ति करानी चाहिए कि तुम माला नहीं करोगे नरक जाओगे, कई बार हमने ऐसे देखा है कि भक्त प्रचार करते हैं, बोले तुम माला नहीं करोगे या तो नरक में जाओगे, और कभी कभी शुरू में लोग थोड़ा अंडे अंडे खाते हैं, उनको बोलते हैं अंडे खाओगे तो तुम्हें देवराज के डंडे पड़ेंगे, तो ऐसा भयावह प्रीचिंग करते हैं कि व्यक्ति डर के कारण जो है भक्ति करने लगता है या नहीं भाग ही जाता है। बोले तुम्हारा तो पूरा हॉरर मूवी दिखाते हो, भक्ति को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि एक हॉरर मूवी हो, तो फिर इससे लोग टूट जाते हैं कई बार। लेकिन बड़े जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत में प्रचार किया बड़े प्रेम से और जो है बड़ी बुद्धिमानी के साथ चतुराई के साथ, तो वैसे ही हमें करना चाहिए। और इनफैक्ट में जो है सिर्फ रामानुजाचार्य का एक कोट तो यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, जो हिदोलनेस महानिधि स्वामी महाराज ने लिखा है कि कितना हमें जो अभक्त से असत्संग से दूर रहना चाहिए। असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार श्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर। एक वैष्णव का प्रथम कर्तव्य है कि वह उन व्यक्तियों के संग का त्याग कर दे जो कृष्ण के भक्त नहीं है तथा स्त्री संतान धन इत्यादि संसारिक वस्तुओं के प्रति अति आसक्त है। तो उसके आगे जो है भक्ति सामने सिंधु में एक श्लोक कोट आता है, वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति न शौर्य चिंता विमुखम जन संवास वैश्य समम। बोल रहे हैं कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति के संग से ज्यादा अच्छा है कि एक पिंजरे में बंद हो जाओ शेर के साथ में, या धड़कती हुई ज्वाला से गिरने का दुख ज्यादा अच्छा है। एक अभक्त व्यक्ति संग कितना अधिक कष्टप्रद है। अभी ऐसा मत कर लीजिएगा कि कभी लोग घर में जाके आग लगा लें और लेकिन वो बता रहे हैं कि इसका जो कष्ट होता है वो इतना अधिक है। और उसके आगे तो और रामानुजाचार्य कोट करते हैं एक श्लोक विष्णु रहस्य से, आलिंगम बरे वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलौकसाम न संघर्षल्य युक्तानाम नाना दैवक सेविनाम। व्यक्ति को विभिन्न देवताओं के उपासकों तथा भौतिक इच्छाओं से प्रेरित व्यक्तियों का संग करने की अपेक्षा एक सर्प बाघ अथवा मगरमच्छ का आलिंगन करना पसंद कर लेना चाहिए। ऐसा कठोर जो है वो श्लोक है ये कि सांप बाघ या मगरमच्छ का आलिंगन करना ज्यादा अच्छा है किसी अभक्त का संग करने से। तो ऐसा इसीलिए बताया है कि हमें डरना चाहिए इस संग से कि क्यों क्या होगा, ज्यादा देर संग करते हैं तो हम भी उनके संग से प्रभावित होते हैं और वही वाइब्रेशंस, वही काम वासनाएं, वही भौतिक जगत को भोगने की जो वासनाएं हमारे हृदय में भी स्थानांतरित होती हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है जो प्रहलाद ने बताया। इसलिए मैं भयभीत हूँ कि अभक्तों के संग में जाके मैं निश्चित रूप से कृष्ण के चरण कमलों को भूल जाता हूँ। हाँ, कि प्रहलाद महाराज नहीं डरते, वो तो हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि जब भी हम भक्तों के संग से दूर जाते हैं स्वाभाविक है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। और तीसरा पॉइंट जो वो बता रहे हैं, प्रीतोपवर्ग ते अंग मूलम प्रीतोपवर्ग शरणम वैसे कदानु, कि हे भगवान वह क्षण कब होगा कि आप मुझे अपने चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य है। जैसा कि हमने इस भौतिक इस भजन में भी पढ़ा था, एही न समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु कृपा करी तो लमोरे बले, कि हे मेरे प्रिय मित्र कृष्ण आप तो दया के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, कृपा करके अपने बल द्वारा मुझे दैनिक स्थिति से उठाकर निकालो और मेरी रक्षा करो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में, जो भक्ति के अंदर आगे बढ़ने के लिए भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, कि एकमात्र मूल्य क्या है, लौल्य होना, इंटेंस ग्रीड ईगरनेस होना कि मुझे भगवान के चरण कमल जो है प्राप्त करने ही हैं, इससे कम में मुझे कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड एफर्ट्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैप्पीनेस, लाइक दैट, कि यदि हमारा लक्ष्य इससे कम होगा तो उससे कम ही हमको आनंद प्राप्त होगा, उससे कम ही प्राप्त होगा। हम ऐसा सोचें कि हमारा प्रयास तो कम हो लेकिन रिजल्ट बेस्ट मिले हमें, तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए हमें जो शास्त्र उचित वचन है उन सबका कठोरता से पालन करना पड़ेगा, भक्ति के विधि विधानों का, तभी हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि सही भली भांति प्रयास नहीं करेंगे तो हमें वो प्राप्त नहीं होगा। और प्रयास करने के सबसे महत्वपूर्ण जो क्वालिफिकेशन है वो है ईगरनेस, कि लौल्यम इंटेंस ग्रीड, कि मुझे वो प्राप्त करना ही है। और हमें शास्त्रों में महान भक्तों के ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिन्होंने इस ईगरनेस को अपने जीवन में प्रस्तुत किया है और हमारे लिए एक आदर्श स्थापित किया है। तो एक कथा हमने पिछले साल लगभग छठे स्कंद में पढ़ी थी, वृत्रासुर की कथा, जो पहले महाक्षत्र केतु थे। तो जब वो युद्ध स्थल के अंदर थे तो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक, बहुत फेमस श्लोक को बोलते हैं, चार श्लोक के अंदर वो प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार से है वो श्लोक, जिसमें उनकी इंटेंस ईगरनेस, युद्ध क्षेत्र में जब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले लड़ रहे हैं, तब भगवान के चरण कमलों की पूजा कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या है वो प्रार्थना? अहम हरे तव पादय कमल दासानु दासो भवि दास विभूयः मनः स्मरेता सुपते गुणास्तु प्रणीत वाकर्म करोतु करोतु कायः। हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमलों के शरण लेते हैं। जब चित्रकेतु थे तब तो पहले भगवान के स्वयं दर्शन करके आए थे, भगवान के दास बनने आए थे, अब वो कह रहे हैं अहम हरे तब पादयिक मूल दासानुदासो भविदास भूय, बोले क्या मैं आपके दासों का दास बन सकता हूँ जो आपके चरणों के मूल के शरण ग्रहण करते हैं। और हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी वाणी मेंढक की तरह डर डर ना करके 24 घंटे हमारा गुणगान कर सके। अधिकांश हमारे साथ ऐसा तो 16 वाला करने के बाद हाचा कोटा खत्म है कि नहीं, बोला आज सुबह खत्म हो गया कहीं, लेकिन 24 घंटे हमें भगवान का गुणगान करने में और अपने शरीर से निरंतर भगवान की सेवा में करने, सेवा में लगाने और मन को भगवान के गुणों का स्मरण करने में लगाना, ऐसी हमारी एस्पिरेशन होनी चाहिए। कबे हमें बोलो से दीना आमार अपराधे घोचे शुद्ध नामे रोचे कृपा हबे बले हृदये सचारा। तो ऐसे हमको एस्पिरेशन रखनी चाहिए कि भगवान तक कृपा प्रदान कीजिए कि एक दिन ऐसा भी दिन आएगा जब मैं अपने मन वाणी और शरीर से निरंतर आपके सेवा में लगा रहा हूँ। अभी तो थोड़ी देर सेवा करते हैं फिर हमको ब्रेक चाहिए होता है, थोड़ा गैप चाहिए होता है, कभी यात्रा में जाते हैं धाम यात्रा करने के बाद में और ज्यादा कृष्ण का हो जाता है, थोड़ा इंडाइजेशन होता है और भौतिक जगत से विरह महसूस होने लगता है, इंटरनेट से मोबाइल फोन से, लेकिन सबका अनुभव होगा यात्रा में 2-4-5-10 दिन के बाद में फिर सबको थोड़ा दिन याद है कब वापिस कब जाएंगे, लेकिन नहीं फिर ज्यादा कृष्णा कौन सा हो जाता है तो फिर हमारा भी अभी वो स्तर नहीं है कि हम डाइजेस्ट कर सके, तो इंडाइजेशन होने लगता है। तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा दोष चाहिए होता है सेंस डेडिफिकेशन का, सटल या ग्रॉस। फिर वो आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, जिसको चैतन्य महाप्रभु शिक्षाश्री बोले ना धनम न जनम सुंदरी, वैसे ही यहाँ वृत्रासुर बोल रहे हैं ना कपृष्टम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम योग सिद्धिर पुनर्भवम सामंजस द्वाविरहय कांक्षे। बोल रहे हैं नाक पृष्ठम, नाक पृष्ठम अर्थात कि जो स्वर्ग के ऊपर में है उसको बोलते हैं ध्रुवलोक, ध्रुव ना मतलब ध्रुवलोक चाहिए, न पारमेष्ट्यम न ब्रह्मा जी का लोक चाहिए, न सार्वभौम अच्छा और क्या चाहिए, पृथ्वी का राज्य चाहिए ये भी नहीं चाहिए, तो क्या पाताल लोकों का चाहिए, न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि, ऐसा भी नहीं है कि मुझे अष्ट सिद्धि चाहिए, अपुनर्भवम वा और आपसे विरहित होकर ना मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर छुटकारा चाहिए, कि आपके विरह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न ध्रुव लोक न भाई न पारमेष्ट्यम न ब्रह्म लोक न पृथ्वी का साम्राज्य, भगवान सब दे सकते हैं, और न असाधिपत्यम न नरक लोगों का साम्राज्य मतलब पाताल लोगों का, न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा न मुक्ति चाहिए, मुझे क्या चाहिए तो वो बता रहे हैं अगले श्लोक के अंदर तीन इंस्टेंस दे करके, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत्सतरा सुधार्थ सुधार्था प्रियं प्रियेव विशुतं विशन्ना मनोरविन्दाक्षत दीक्षते त्वाम। बोल रहे हैं कि हे गमन नयन भगवान, तीन उदाहरण दे रहे हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगा कि जिस प्रकार पक्षी के छोटे बच्चे होते हैं जिनके पंख नहीं निकले, पंख विहीन होते हैं, तो वो जब घोंसले में होते हैं तो बहुत बेचैनी से जब माता जाती है बाहर जो कि कुछ कीड़ा और कुछ अन्न अनाज कुछ धान अपने चोंच में लेकर के आएंगे तो माता खिलाएंगी, तो दिन भर वो ऐसे उत्सुकता से वेट करते हैं ईगरनेस के साथ में कि कब माता आएगी। और हम इस समय राधा महाराज का प्रवचन सुन रहे थे तो बता रहे थे हमने तो शहरों में देखे नहीं ऐसे घोंसले बच्चे इत्यादि, लेकिन महाराज बोले हमने बहुत देखे हैं गाँव के अंदर, तो बता रहे थे कि जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी पेड़ के पास थोड़ी हवा आती है तो ऐसा पत्तों के सर सराने की आवाज आती है, तो बच्चे घोंसले के बाहर से पंख तो नहीं है लेकिन देखते हैं कि माता आ गई है और अपना चोंच ऐसे खोल करके बैठ जाते हैं कि माता आ गई है आप दाना डालेंगे, तो इतना उनका ईगरनेस होता है। लेकिन वृत्रासुर जब प्रार्थना करते हैं तो बोल रहे नहीं 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 मुझे तो भगवान के शरीर से इस प्रार्थना के अंदर वो डेफिशिएंसी है, ईगरनेस तो है लेकिन साथ में क्या है, भगवान मतलब वो उन बच्चों को माता के शरीर के बाहर से कुछ चाहिए, वो माता से ज्यादा जो माता कीड़ा जो अन्न पकड़ के लाएगी उससे प्रेम करती है। तो वृत्तासुर को इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो अगला स्टैंडा देते हैं, स्तन्यम यथावत सतरह सुधारता, जिस प्रकार जो गाय का बछड़ा होता है जो भूख से पीड़ित छोटा बच्चा होता है तो वो गाय के दुहे जलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि किस माँ को दुहा जाएगा और वो स्तनपान करेंगे माता का। तो इसमें बछड़े पूरा दिन ईगरनेस रहते हैं और पूरी तरह माता पे आश्रित है दोनों, तो इसमें कंप्लीट डिपेंडेंस है, ईगरनेस है, लेकिन बछड़ों को भी माता के चाहे अब शरीर के ही भाग का कुछ चाहिए लेकिन उनको दूध चाहिए। और दूध पीने के बाद वो क्या करते हैं, माता को छोड़ के तो खेलना शुरू कर देते हैं, बोले नहीं नहीं भगवान ऐसा तो नहीं भक्ति मुझे चाहिए। तो क्या चाहिए, प्रियम प्रियेव विशुद्धम विषन्ना, बोलते हैं जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री है या एक प्रिया है वो अपने प्रेमी की या वो अपने पति की जो दूर देश में कहीं गया हुआ है उसकी हमेशा प्रतीक्षा करती रहती है और सोचती है कि किस प्रकार वो वहां पर जो है कैसे खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, कौन कपड़ा धोते होंगे इत्यादि, हर समय उनका मेडिटेशन करती रहती है कि उनसे बात हो जाए या कुछ हो जाए और उनकी सेवा करना चाहती है, है कि नहीं। तो उस प्रकार से हे भगवान मरो मनो अरविंदाक्ष, हे अरविंदाक्ष हे कमल नयन भगवान, मेरा मन भी उसी प्रकार आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता है, मैं रहता हूँ उत्कंठित रहता हूँ कि इस प्रकार से मैं सेवा करूं, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री को एक पत्नी को अपने पति की सेवा में जो आनंद प्राप्त होता है वो उसी को ही प्राप्त करना चाहती है, अन्य आनंद नहीं प्राप्त होता। तो ये उदाहरण देते हैं वृत्रासुर, तब उनको संतुष्टि प्राप्त होता है कि नहीं नहीं भगवान मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तो केवल आपकी प्रत्यक्ष सेवा करना चाहता हूँ। तो भक्ति का अर्थ यही है भगवान को आनंद देने का प्रयास करने का, चाहे भक्त खुद भी स्वयं कुछ कष्ट प्राप्त होना हो, और ये ईगरनेस को मेंटेन करना कि कब मैं स्वसुख की इच्छा से निवृत्त होकर भगवान के सुख भगवान के आनंद को प्रदान करने का प्रयास करूंगा। वह क्षण कब होगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य है, बद्ध स्वकर्म भी मूलम प्रीतोपवर्ग शरणम वैसे कदाप, हे भगवान आप मुझे कब बुलाएंगे। और इसीलिए एक भक्त जो है इस ईगरनेस के साथ, इस लौल्य के साथ, इस डिपेंडेंस के साथ जो है अपने जप अध्ययन या भक्ति के सभी क्रियाओं को हमें प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वो प्रेम भक्ति नहीं होगी, वो क्रिया हो जाएंगी, अच्छी क्रिया है वो हमें प्यूरिफाई जरूर करेंगी, लेकिन साथ साथ यदि जो हम भक्ति क्रिया में लगते हैं चाहे वो जप हो श्रवण हो अध्ययन हो प्रचार का कार्य हो कुछ भी सेवा हम कर रहे हो, ये सब कार्य के अंदर हमें ये एस्पिरेशन रखना चाहिए कि मैं एक दिन भगवान की प्रत्यक्ष सेवा भी जरूर करूंगा। तो किसी का एक प्रश्न हो तो आप क्या कोई टिप्पणी हो।
आपने जो बौद्धिक जगत की तकलीफ बताई काफी, जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार ऐसी जैसे आपने कार का उदाहरण दिया कि गड्ढा देते रोक देते गाड़ी को, डीप कर्व है, तो ऐसी प्रभुपाद जी अपने भी भक्तों के साथ अमेरिका में जा रहे थे सड़क पे, एक बोर्ड में लिखा आया आगे जाके टेम्परेरी इनकन्वीनियंस और परमानेंट रिलीफ,
टेम्पररी इनकन्वीनियंस और परमानेंट रिलीफ,
समझे आप लोग इसको, बस यही है हमारा खसरा का चीज, थोड़ी सी आप तकलीफ पालो बाकी मेरा काम है।
तो हम भक्ति तो करें, मनुष्य जीवन इज बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, कि हमें शरीर तो प्राप्त हो गया इसे इतना कष्ट प्राप्त होगा लेकिन भगवान की कृपा से भक्तों की कृपा से हमको भक्तों का संग प्राप्त हुआ है जिसे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सके, तो अब हम इस बैड बार्गेन का बेस्ट यूज कर सकते हैं भगवान की सेवा करके और फिर उसके बाद ताकि दोबारा ना आना पड़े भव्य जगत के अंदर मृत्यु के चक्कर में। ज्ञान और कर्म ठग क्यों बोला गया है, क्योंकि उसमें भक्त का मुख्य लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता नहीं रहता है, भक्ति का अर्थ भगवान को प्रसन्न करना, लेकिन चाहे वो ज्ञान योग और आगे जाए ज्ञान विशुद्ध भक्ति भी हो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो शुद्ध भक्ति से हमको जो है शुद्ध भक्ति को छुपा लेते हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, कि उत्तम भक्ति है जो ज्ञान कर्म आदि के आवरणों को सब छोड़ करे, ज्ञान कर्म और योग इत्यादि ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो की जाए वही उत्तम भक्ति है। तो इसीलिए बताया गया नहीं, ज्ञान से विज्ञान नहीं बनता। जब वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्य ज्ञानम से युगम, ज्ञान विज्ञान बनता है भगवान की सेवा में लगने के साथ, केवल शुष्क ज्ञान में भी विज्ञान नहीं बनता।
ज्ञान अर्जित करके फिर विज्ञान की रूप जाता है ना, ठग ठग इतना भारी शब्द क्यों बोला गया?
हाँ, लेकिन उस ज्ञान को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो ज्ञान अधूरा ही रहेगा, तब वो विज्ञान नहीं बनेगा।
तब भी कुछ ना कुछ फायदा तो है, ठग वाला शब्द मतलब बड़ा भारी शब्द हो गया ना।
एक शुद्ध भक्त के लिए जब वो आता है, जैसे गोपियां हैं वृंदावन के अंदर, तो उनको कोई ज्ञान नहीं कृष्ण भगवान है ये है, उनकी भक्ति ज्ञान शून्य भक्ति है कि नहीं, कोई फिलोसॉफी नहीं लगाती, वो बिल्कुल प्रेमा भक्ति है। अगर मान लीजिए यशोदा माता को पता था कि उनका बेटा भगवान है तो फिर तो वो माता का प्रेम नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो इसीलिए उत्तम भक्ति है उसमें भक्त को ये भी ध्यान रहता है कि वो भगवान के वो भगवान है। तो अल्टीमेटली ज्ञान और कर्म जिस प्रकार से है वो तो केवल भगवान की इच्छा को ही पूरा करना चाहता है। इसीलिए शुद्ध भक्त के प्लेटफॉर्म से, शुद्ध भक्ति के धरातल से वो दोनों ठग हैं। हमारे धरातल से वो प्रोग्रेसिव स्टेपिंग स्टोन हो सकते हैं कि ज्ञान विशेष भक्ति या कर्म विशेष भक्ति, क्योंकि हम कर्म और ज्ञान से आसक्त हैं। इसीलिए तो हमारे स्तर पर वो अलग बात है, हमारे प्लेटफॉर्म से वो कर्म विशेष भक्ति या ज्ञान विशेष भक्ति जो है वो एक स्टेपिंग स्टोन हो सकते हैं शुद्ध भक्ति के लिए, लेकिन वो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट होना चाहिए शुद्ध भक्ति की कर्म और ज्ञान का त्याग। ठाकुर भक्ति में लिख रहे कि दोनों ठग के समान है। हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।